नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं का स्रोत पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक आकलन से निर्धारित होता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रक्षा खरीद के बारे में नई दिल्ली में ये बात कही। प्रवक्ता ने ऊर्जा क्षेत्रों के संबंध में कहा कि भारत बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। भारत रूस संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध अपने अपने गुणों पर आधारित होते हैं और इन्हें किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।
Our ties with any country or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership.
पूर्व अमरीकी उप वाणिज्य मंत्री रेमंड विक्री ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति उसे टैरिफ के दबावों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने वाली नीतियों को अपनाने का भरोसा देती है। श्री विक्री ने कहा कि भारत के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रुख उसकी आर्थिक क्षमता के प्रति असम्मान और एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है जो मध्यम या दीर्घकालिक साझेदारी के लाभों को पहचानने में विफल रहता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी लंबित मुद्दों पर चर्चा केवल द्विपक्षीय आधार पर होगी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति समेत सभी देशों को ये बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सीधी बातचीत हुई। युद्ध विराम का अनुरोध पाकिस्तान ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। किसान कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा के दौरान की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं में से एक शहर की सीमा के भीतर 53 स्कूल भवनों के उन्नयन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में कल देर शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया। हालांकि अंधेरे के कारण चल रहा अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जो आज सुबह उजाला होते ही फिर से शुरू होगा। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रिवन्ना को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया। हसन जिले में उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के 4 मामलों में से यह एक है। सजा आज सुनाई जा सकती है। नेपाल के लुम्बिनी में लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लुम्बिनी यूनेस्को का धरोहर स्थल और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। पिछले 3 दिन से कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और प्रशासनिक कामकाज ठप कर रहे हैं। लुम्बिनी में सालाना लगभग 16 लाख नेपाली और 2 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। यह माया देवी मंदिर और शांति स्तूप जैसे स्थल का घर है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली इंडोनेशिया के अलवी फरहान और मलेशिया के जस्टिन होई पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये मैच आज खेले जाएंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।